हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। राणा महल के अंदर हॉल में एक बड़ी कुर्सी पर अमरकांत सिंह राणा बैठे थे। उनके इर्द गिर्द दो आदमी खड़े थे, शहर के DGP और मेयर। सामने वाली कुर्सियों पर राणावत और राठौर परिवार बैठे थे। आशुतोष सिंह राणावत और प्रारब्ध सिंह राठौर एक दूसरे को तीव्रता से घूर रहे थे। राणा साहब ने दुख के साथ दोनों की ओर देखा और कहा, बस करो यार, कितनी बार कहा है कि कम से कम मेरे सामने तो शांत रहा करो, लेकिन अब लगता है तुम लोग मेरी बात नहीं मानना चाहते। दोनों ने तुरंत अपनी निगाहें राणा साहब की ओर कर ली और आंखें झुका लीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, कहिए किस लिए बुलाया है? प्रारब्ध सिंह राठौर धीरे से बोला, बताता हूँ, लेकिन आज कितने समय बाद मेरे बच्चे मेरे घर आए हैं, जरा उनसे हालचाल पूछ लेने दो। कहो अमोघ और अर्जुन, कैसे हो? दोनों ने हल्के से मुस्कुराकर सिर झुकाया। मानना पड़ेगा तुम लोगों को, इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी से जिस तरह से तुम लोगों ने बिजनेस संभाल लिया है, वो तो इस उम्र में तुम्हारे बाप के अंदर भी नहीं थी। राणा साहब ने मुस्कुराते हुए अमोघ और अर्जुन से कहा, पर नजरें प्रारब्ध की ओर थीं। हाँ, आपकी नज़र में मैं बहुत बड़ा नालायक था और शायद पूरी जिंदगी नालायक ही रहूँगा। प्रारब्ध सिंह राणावत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। प्रारब्ध की बात सुनकर राणा साहब खुलकर हंस पड़े। शायद तुम्हें पता नहीं प्रारब्ध, पर बुढ़ापे में सबसे ज्यादा लायक नालायक औलाद ही निकलती है। जहाँ सीब, प्रारब्ध सिंह राठौर ने हल्के से सिर झुकाया, मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके लिए कभी तो लायक साबित हो सकूंगा। और तुम बताओ विराट, तुम कैसे हो? राठौर परिवार से हालचाल पूछने के बाद राणा साहब अब राणावत परिवार की ओर मुड़े। विराट ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। और सम्राट कहाँ है? राणा साहब ने इधर उधर देखते हुए कुछ कड़े शब्दों के साथ पूछा। कुछ देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। विराट आशुतोष जी की ओर देख रहा था और प्रारब्ध सिंह राठौर भले ही जता नहीं रहे हों, पर साफ पता चल रहा था कि वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। कहीं अब मेरा शक भी यकीन में न बदल जाए कि ये मीटिंग सम्राट के कारण ही इकट्ठी की गई है। आशुतोष सिंह राणावत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिस सवाल से वो बचना चाहते थे, वो सवाल सामने आ गया था। पूरे हॉल में बिल्कुल शांति छा गई थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा था। धड़कनों की आवाज़ इतनी तेज थी कि एक दूसरे की धड़कन घड़ी की सुई से भी तेज सबको सुनाई पड़ रही थी। बताते क्यों नहीं हो, सम्राट कहाँ है? अब की बार राणा साहब ने कुछ तेज आवाज में पूछा। इधर पुलिस स्टेशन में, व्हाट इज योर नेम? पुलिस स्टेशन में अधिकारी ने पूछा। सम्राट सिंह राणावत, सम्राट ने एक लाइन में जवाब दिया। राणावत सरनेम सुनकर पुलिस अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे तक इस तरह देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सम्राट उसके इस तरह से देखने पर हड़बड़ा गया। लगता है कि किसी राणावत के साथ इसका पाला पड़ चुका है और उसके कारनामों से ये परेशान है। कहीं मैं दूसरी जगह न फंस जाऊँ। वो फिलहाल कोई भी मामला नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे। सर, प्लीज चेक माई डॉक्यूमेंट्स, सम्राट ने तेजी से कहा। हालांकि अभी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, ये बात वो भी जानता था, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी उसकी बात सुनता तो शायद वो माहिर से संपर्क करने की कोशिश करता। सॉरी सर, बट नो नीड ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, हमारे अधिकारियों को कोई गलतफहमी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमें इस गलती के लिए माफ कर देंगे। पुलिस अधिकारी झटके से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ और उसने नमस्कार की मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सम्राट हैरान हो गया। हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता सर, हम तो आपके फादर को भी जानते हैं। रियली सॉरी दैट, प्लीज उनसे कुछ मत कहना। मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पुलिस अधिकारी ने बेहद घबराते हुए शालीनता के साथ कहा। इस ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट को वहाँ देखकर उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। ये डैड को जानता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, जो भी हो, मुझे किसी तरह से यहाँ से निकलना है। सम्राट ने अपनी सोच को दरकिनार किया और फिर पुलिस वाले से पूछा, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? आपको पूछने की क्या ज़रूरत है सर, ये पुलिस स्टेशन आपका ही है, आप जो चाहें कर सकते हैं। पुलिस वाले ने झटके से अपना फ़ोन और सामने पड़ा हुआ टेलीफोन दोनों ही सम्राट के आगे कर दिया। साथ में एक कांस्टेबल को बुलाकर सम्राट के लिए कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जिसे सम्राट ने थैंक यू कहते हुए मना कर दिया। सम्राट को ज़बरदस्त हैरानी हो रही थी। अभी तक जो पुलिस वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, अभी उसकी एक वीआईपी की तरह रिस्पेक्ट कर रहे थे। उसने अपना सिर झटका। सम्राट ने अपने दिमाग पर जोर डालकर माहिर का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। दो या तीन बेल पर ही माहिर ने फोन उठा लिया था। कहाँ हो तुम?